ओम शांति। आज हम एक बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक पर चर्चा करेंगे, आपकी सबका प्रिय टॉपिक एकाग्रता। पसंद है ना? हर कर्म में भी एकाग्रता हो जाए, योग में भी एकाग्रता हो जाए, जो स्टूडेंट हैं पढ़ाई में एकाग्रता हो जाए, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और आजकल कुछ ऐसे कारण संसार में हो गए हैं जिन्होंने बहुतों की एकाग्रता को समाप्त कर दिया है। पता है आपको वो कौन कौन से हैं? बोलो, सब युवक बोलेंगे। मोबाइल? हाँ, बात तो ठीक कही, मुझे तो ख्याल ही नहीं था। मोबाइल का दुरुपयोग, किस किस से बात करते हैं और क्या क्या बात करते हैं, उसका प्रभाव दिमाग पर गहरा पड़ता है। इतने फ्रेंड्स बना लेता है हर व्यक्ति, हर युवक, कि उनसे बात करने में, उनको संतुष्ट करने में, उनको राजी करने में उनकी सारी एकाग्रता चली जाती है। और बताओ विनोद भाई, आप पूर्वज हो, आज विशेष रूप से आज के माहौल में इंप्योरिटी के वाइब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत युवकों को मैं देखता हूँ जिनका मेरे से कॉन्टेक्ट होता है, उन्हें भी पता नहीं चलता उनकी एकाग्रता क्यों खत्म हो गई। पढ़ रहे हैं भाई? गड़बड़ है कुछ? पढ़ रहे हैं और कुछ भी याद नहीं रहता? ये चारों ओर के माहौल का प्रभाव, जो उनके शरीर में भी कई हार्मोन्स की चेंजेज होती हैं, ब्रेन पर भी उसका गहरा इफेक्ट होता है। तो इसके लिए माताओं को कुछ करना है अपने बच्चों के लिए। बोलो, माताएं बैठी हैं बहुत, क्या करेंगे, क्या करेंगे? पता है आपको, और आपके हाथ में है वो चीज। माताएं बहने जो भी भोजन बनाते हैं उसमें पवित्र वाइब्रेशन भरें। हमारे यहाँ ऊपर जो धर्म की कॉन्फ्रेंस चल रही है, रिलीजन की, तो उसमें अनेक तरह के लोग भाषण करते हैं। तो कोई क्रिश्चियंस का एक पादरी भी आया हुआ है, उनके यहाँ भी ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी होता है, विशेष करके प्रीस्ट के लिए या और जो ऊंचे पदों पर क्रिश्चियन में हैं। तो वो साफ कहते हैं ये बहुत कठिन काम है। पर कल कोई भाषण करते हुए कह रहा था कि यहाँ आप लोग जो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं उसका एक मुख्य कारण दिखाई देता है, आपका पवित्र भोजन जो लोगों को बाहर नहीं मिलता। अब देखिए, उन्हें ये आभास हुआ होगा कि हमारा भोजन पवित्र है, शाकाहारी है, केवल उतना नहीं पवित्र है, क्योंकि उन्होंने भी खाया 3 दिन। तो भोजन से शरीर में कोई भी हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस हो, पवित्र भोजन से वो आपे ही बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस एकाग्रता को बिल्कुल नष्ट कर देता है। और आगे चलें, एकाग्रता क्यों भंग हो रही है, मैं एक और चीज सुनाना चाहता हूँ आपको। ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। कल ही एक मेडिकल स्टूडेंट का मुझे फोन आया, कन्या है कोई, और उसने कहा कि पढ़ाई के दबाव से मुझे डिप्रेशन जैसा होने लगा है। क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ बच्चों को ऐसा होता है, मेडिकल वालों को विशेष होता है, टफ होता है सिलेबस, बहुत भारी लगता है क्योंकि ब्रेन की शक्तियां वीक पड़ गई हैं, खासकर आजकल क्योंकि मन वीक हो गया है, मन के वीक होने से ब्रेन वीक हो गया है और पढ़ाई का प्रेशर लोड तो बहुत ज्यादा है तो वो बच्चे सहन नहीं कर पाते, इसलिए डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि मन की शक्तियां निगेटिव ना हो। आत्मा यहाँ बैठकर ब्रेन के बीच में बैठकर जो कुछ सोचती है उसके वाइब्रेशन पहले जाते हैं ब्रेन में। अगर कोई मनुष्य बहुत निगेटिव ही सोचता है तो क्या होगा, ब्रेन को निरंतर निगेटिव एनर्जी मिलेगी। हम सप्लाई कर रहे हैं एक निगेटिव एनर्जी अपने ब्रेन को, उससे ब्रेन वीक हो जाता है। साथ में माताओं को एक ध्यान और रखना, और जो फादर्स हैं लौकिक, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। किसी कन्या ने मुझे बताया, मेरे माँ बाप दोनों ही बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन बचपन से दोनों ने ही हमें प्यार न देके डांट दी है। अब हो सकता है माँ बाप का तो प्यार हो डांटना, होता है ना ये, वो तो बच्चों को इसलिए डांटते हैं ये अच्छा पढ़े अच्छा करे, कहीं कुछ खेल बिगड़ न जाए, लेकिन बच्चे तो इस बात को नहीं समझेंगे ना। कहा इस कारण से मेरे ब्रेन पर बचपन से ही एक प्रेशर बना रहा। मैंने जब उससे बहुत सारी बातें पूछी ना, तुम्हें क्या क्या हुआ, मेडिकल में तो बहुत बच्चे जा रहे हैं, कोर्स टफ होगा लेकिन तुम भी तो होशियार हो। कहा मैं बहुत होशियार रही हूँ। तो फिर एक ही ये कारण बताया, तो मैंने कहा देखो तुम्हारे माँ बाप 10-12 घंटे काम करके आते होंगे, वो भी तो थक जाते होंगे ना, तो अपना गुस्सा तुम पे उतार लेते थे। माँ बाप कहाँ उतारे, उनके सामने बच्चे होते हैं, उनकी छोटी मोटी मिस्टेक देखी, सारा टेंशन ट्रांसफर कर दिया। इसका ध्यान रखना है आज के समय में विशेष करके, बच्चों के माइंड और ब्रेन बहुत सेंसिटिव होते जाते हैं, उन्हें उमंग दिलाना, उन्हें मदद करना, ये सभी के लिए आवश्यक है ताकि उनकी एकाग्रता कभी भी बिगड़े नहीं। अब हम अपने यहाँ आ जाएं, ज्ञान योग के मार्ग पर चलने वालों की एकाग्रता कैसे कम पड़ती है, वीक होती है, क्यों बोलो सभी। हरीश भाई, व्यर्थ का चिंतन, और व्यर्थ चिंतन के पीछे एक छोटा सा रहस्य है। मैं बाबा का एक सुंदर सा महावाक्य आपको याद दिलाऊं, अव्यक्त बाबा का, देखना और सुनना इसी पर आधार है। दो चीजों का कौन सुना रही थी सीमा बहन उस दिन, नहीं चाहे हम कंप्लेंट करें या कंप्लीट बने, देखना और सुनना ही आधार है व्यर्थ का। हम क्या देखते हैं, हमें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, इस पर सभी को बहुत ध्यान देना है। अगर सुनना व्यर्थ है तो चिंतन बहुत व्यर्थ होगा और हमारी एकाग्रता उससे प्रभावित हो जाएगी। देखना विशेष रूप से ध्यान दे, सभी योग में सफलता पाने वाले, आत्मिक दृष्टि हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है, दैहिक दृष्टि एकाग्रता को नष्ट करती है। पीछे हम मुरलियां सुन चुके हैं, बहुत याद है ना, अभी लहर चली बाबा की, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास कर, बहुत अच्छी लहर चली, ये तुम्हें कर्मातीत अवस्था की ओर ले चलेगी, तुम्हें पास विद ऑनर कराएगी। तो बहुत सुंदर प्रैक्टिस है सबको आत्मा देखना। चलता है सबका, चलता है, सब चलाए, रोज हम सब मनुष्यों के बीच में हैं, थोड़ी थोड़ी भी प्रैक्टिस करेंगे, सब आत्माएं हैं, ये शरीर है उनके, आत्मा तो चेतन है। कोई छोटा बच्चा भी है, शरीर ही तो उसका छोटा है, वो तो आत्मा पूरी 5000 साल की यात्रा तय करके आई है। चिंतन भी करेंगे और आत्मा देखेंगे भी। और आगे चलें, किसने एकाग्रता को भंग किया है, बहने बताएंगी। बोलो कन्याएं बैठी हैं, सबको अनुभव है, अपने अनुभवों को ध्यान में लाओ। एकाग्रता किससे भंग होती है, हैं? अल्प काल की सुखों की प्राप्तियों के पीछे भागने से। आपने तो बहुत गहरा उत्तर दे दिया। कर्म इंद्रियों का रस, संसार में बहुत चीजें आजकल मनुष्य को आकर्षित कर रही हैं। यदि हम उनके आकर्षण में रहेंगे तो हमारी एकाग्रता नष्ट हो जाएगी। आप एक बहुत सुंदर से मॉल में चले जाएं, जहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें बिक रही हैं, और देखें आपका कितना योग लगता है वहाँ। आधा घंटा रहें जरा दुकानों में, घूम लें और देखें मन की स्थिति कैसी रहती है। चाहे जेब में पैसा बिल्कुल ना हो, लेकिन इच्छा होगी ये चीज बड़ी अच्छी है। हम दुबई में एक बड़े मॉल को देखने गए जो बहुत प्रसिद्ध है, शायद सारे संसार में वो बहुत प्रसिद्ध है। तो उन्होंने बाहर शोकेस में सुंदर सुंदर हीरे रखे हुए थे जो कांच से दिखते थे। हमने भी पहली बार देखे, हीरे इतने अच्छे होते हैं क्या, जो सतयुग में आप सबके महलों में जड़े जाएंगे। मैं सोचता था हीरो की इतनी चमक कैसे होगी, पर वहाँ ऐसे सुंदर हीरे देखकर दिखाई दिया कि सचमुच राजाओं के महलों में जो हीरे जड़ेंगे उसकी रौनक क्या गजब की होगी, विशेष रूप से रात को। तो हम तो उन्हें ले ही नहीं सकते किसी भी तरह। मैं वहाँ सोच रहा था बहनें जब यहाँ आती होंगी तो उनकी मनोस्थिति क्या होती होगी। बहनों को ज्यादा चाहिए ना भाई ज्वेलरी, भाई तो बेचारे खाली हाथ खाली गला खाली कान रहते हैं, भाइयों को तो ज्यादा आकर्षण नहीं होगा। तो हम सब चेक कर लें, सांसारिक सुखों के आकर्षणों के प्रति हमारा कितना आकर्षण है, और अपनी स्थिति धारणाएं ऐसी बनाएं। एक ही शब्द बोलेंगे दलीप भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए, इस संसार से हमें कुछ नहीं चाहिए। समय आया है बहुत सुंदर जब भगवान से सर्व खजाने हमें प्राप्त कर लेने हैं। ये समय अगर हमने सांसारिक सुखों के पीछे लगा दिया तो हम जन्म जन्म के लिए खाली रह जाएंगे। बहुत अच्छा चिंतन स्वयं से करें, इसलिए एकाग्र चित्त वही हो सकते हैं जो सांसारिक सुखों में अलिप्त हो गए हों। किसी के घर में सुख ही बहुत हो, साधन बहुत हो, उनको उसे छोड़कर जंगल में तो नहीं जाना है, लेकिन अलिप्त भाव से अनासक्त भाव से उन्हें यूज करते रहें। और इसमें बाबा ने बहुत अच्छी एक स्थिति बताई है, मैं क्लासेज में वो सुनाता आया हूँ, आप सभी उस पे फिर ध्यान दें। और मैं समझता हूँ हम सब जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए ये धारणा बिल्कुल सरल हो जाएगी, कुछ ही लोगों के लिए वो धारणा कठिन होती है। क्या है वो, चाहे 36 प्रकार का भोजन मिले या दाल रोटी, दोनों में समान आनंद हो। किसी किसी को तो हम में से दाल रोटी ज्यादा अच्छी लगती है, 36 प्रकार के आ जाएं तो मजा ही बिगड़ जाता है, होता है नहीं? बहुत सब त्यागी आत्माएं आप सब तो यहाँ बैठी हैं, लेकिन ये बात सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, चाहे झाड़ू लगाने की सेवा मिले चाहे हजारों के बीच भाषण करने की, दोनों में समान आनंद। देवान नहीं कि झाड़ू कैसे लगाएं, ये श्रेष्ठ स्थिति है योगियों की। ऐसी स्थिति, ऐसी धारणा बनाने वालों का चित्त एकाग्र हो जाता है। और मोटे रूप से देखें, कर्मेंद्रियों का रस एकाग्रता को नष्ट करता है, असंतुष्टता एकाग्रता को नष्ट करती है। पांचों विकारों में से कोई भी विकार जीवन में आ गया है वो एकाग्रता को नष्ट करता है, चाहे वो लोभ हो या मोह हो, उससे मनुष्य की एकाग्रता चली जाती है। और एक और गहरी बात सोचे सभी, जिसको बाबा बहुत पहले मुरलियों में एक शब्द देते थे, कर्म कॉन्शियस। क्योंकि हम सबको सारा दिन कर्म करना है, चाहे वो सेवा हो या लौकिक कर्म हो, उसमें मनुष्य इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि उससे बाहर वो कुछ अभ्यास नहीं कर पाता। इसलिए कर्म में बहुत लिप्तता, सभी समझते हैं ना, सबको अनुभव है, अपने कर्म क्षेत्र पर गए और बहुत चीजें भूल गए। देखो आजकल कारों में बहुत अच्छे साधन हैं, सबकी कारों में सीडी प्लेयर लगे रहते हैं, तो लोग अपना सीडी चला लेते हैं गाड़ी में, तो हमें बताते हैं दिल्ली की कई बहनें जो आईटी में इंजीनियर हैं कि उन्हें गुड़गांव से अपने ऑफिस जाना होता है नोएडा, 2 घंटे की यात्रा होती है, 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, वो सीडी चला लेती हैं, क्लास कोई कमेंट्री, और कहा हमारे 2 घंटे इतने सुंदर बीतते हैं कि बस वो आत्मा की खुराक बन जाती है। जब आते हैं फिर 2 घंटे लगते हैं, सारे दिन कामकाज की थकान ही समाप्त हो जाती है। आप सबको भी अनुभव होगा, जब हम कोई अच्छे गीत बजा लेते हैं, अच्छा योग करते हैं, तो कितना सुख मिलता है। तो कर्म कॉन्शियसनेस से हमें थोड़ा ऊपर उठना, और इसका तरीका है आज की मुरली का वरदान, याद करो, कर्म करते हुए बीच बीच में ये प्रैक्टिस हो, मैं आत्मा बाबा हरावन हर, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ, बाबा मुझसे करा रहा है, करण करावन हार, तो बाबा की स्मृति बनी रहेगी। ऐसे बीच बीच में शरीरी होने का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास, 5 स्वरूपों का अभ्यास, और जिसको बहुत प्रैक्टिस हो बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करने का अभ्यास चलता रहे। अभ्यास मोस्ट इम्पोर्टेंट है एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। तो मैं आप सभी से फिर से कहूंगा, सेवाएं तो सबके पास हैं ही, अपनी एकाग्रता को कितने मिनट तक ले चलेंगे, 32। थोड़ा प्रैक्टिकल कर ले ताकि सब कर सके, 10 मिनट तक। जिस चीज पर हम फोकस करना चाहें, 32 तो इसलिए कहा जाता है, मैंने सुनाया है कई बार, मैंने बचपन में ही पढ़ ली थी ये बात, अगर कोई योगी 32 मिनट तक एकाग्रचित हो जाए तो उसे मन चाही सिद्धियां मिल जाती हैं। हमें सिद्धियों की तो जरूरत नहीं, लेकिन हमारी एकाग्रता जो हमें ईश्वरीय सुख देती है, हमारे लिए वही सबसे बड़ी सिद्धि है। हम 10 मिनट तक ले चलेंगे और बाबा का 1-2 महावाक्य मैं सबको याद दिला दूं, उसे सब याद करते रहें और अपनी एकाग्रता को बढ़ाने में उसकी मदद लेते रहें। बाबा ने कहा, बुद्धि को स्थिर करना तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ साधना है। मैंने अपने शुरू के सालों में इस महावाक्य को अपने सामने रखा बहुत, बुद्धि को स्थिर करना हमारी बहुत सुंदर साधना है। दूसरा बाबा का महावाक्य 5-7 साल पहले, ये भी बहुत सुंदर है। सबसे बड़ी कला है बुद्धि को जहाँ चाहो, जिस स्वरूप पर चाहो, जितना समय चाहो, जब चाहो स्थिर कर सको। ये सबसे बड़ी कला है। और ये कला आ जाने के बाद आगे सब कलाएं स्वतः ही आ जाती हैं। एक तो कलाएं हमारी वो हैं जिन्हें हम 16 कला कहते हैं, आत्मा की डिग्री ऑफ परफेक्शन, डिग्री ऑफ पावर। लेकिन एक कलाएं ये संसार की कलाएं भी हैं, नृत्य कला, गायन कला, म्यूजिक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने की कला, भाषण करने की कला, लिखने की कला, ये भी कलाएं हैं। एकाग्रता के बल से ये सभी कलाएं भी विकसित होती हैं। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह, हमारे यहाँ कई लोग जो कम पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छे कवि बन गए, बन गए या नहीं। मैं आपको सुनाऊं एक हंसी की बात। हमारे ऊपर ज्ञान सरोवर में एक बहन आई हुई है जो आंध्र की है, हिंदी नहीं जानती। आप बड़े खुश होंगे ये बात सुन के, जो एक्यूप्रेशर सिखाई है बहुत अच्छा, और वहां सबको कर रही है डायबिटीज को ठीक करने के लिए खास। तो मैं भी गया, मुझे उसने पहचान लिया, बड़ी खुश हुई। आंध्र वाले पहले पैर छूते हैं। अरे मैंने कहा माता जी, भगवान मुझे डांटेगा, तुम ये क्या करा रहे हो, मैंने किससे पैर नहीं छुआ रहे, तुम छुआ रहे हो। तो क्या हुआ, वो हिंदी में गीत गाने लगी जो मेरी भाषा नहीं समझ रही थी। डॉक्टर दूसरे थे, उसको ट्रांसलेट करना पड़ रहा था। मैंने उससे पूछा, तुमने ये हिंदी के गीत कहाँ से सीखे, कि मैं तो जब से ज्ञान में आई ये गीत खुद बनाने लगी। सोचो, तेलुगु भाषा पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं और हिंदी के गीत बनाने लगी। सोच लो आप कैसे हुआ ये। हमारी आंतरिक कलाएं विकसित हो जाती हैं, जो भाषा से जिनका कोई नाता नहीं है। भाषा तो एक माध्यम है ना, जो ब्रेन से ट्रांसलेट होती है। ऐसा कहें हमारा ब्रेन जो है ट्रांसलेटर है, भावनाएं हमारे वाइब्रेशन। तो कहा मैं तो एकांत में होती हूँ, बाबा को याद करती हूँ और गीत गाने लगती हूँ उसकी महिमा में। अब वो हिंदी में बनाने लगी और हिंदी आती नहीं। एकाग्रता की कला से सभी कलाएं विकसित हो जाती हैं। अब इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। कई प्रैक्टिस हम आपके सामने रखते हैं जो हमारे चित्त को एकाग्र करती हैं। मुझे आज का अनुभव याद आ रहा, इसलिए मेरा चित्त शांत होने लगा फिर से। आज मेरी आंख खुली सवेरे बहुत जल्दी, और मैं उठते ही कुछ अभ्यास कर रहा हूँ। और जिस दिन से बाबा ने ये मुरली चलाई है, तुम पूर्वज हो अभी अभी, और तुम्हें सर्व खजानों का स्टॉक बहुत जमा कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा है। कितना बड़ा हमारा परिवार, सारा संसार। उनके दुखों को तुम्हें समाप्त करना है। आज की मुरली याद है ना, ये संसार मेरा है, कितना अच्छा लग रहा था। मुझे फील हो रहा था कि भगवान को जानना ये सहज काम नहीं है। मैं अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकता, कितनी बड़ी बात है। सचार और दुखों का जैसे एक प्रकोप छाया हुआ है संसार में, और बाबा कह रहा है संसार मेरा है, मालिक तो मैं ही हूँ, मैं दुख नहीं देख सकता। मैंने मुरली सवेरे सुन ली थी, आजकल व्हाट्सएप पे आती है, पहले ही सुन ली, इतना मजा आया मुझे, क्लास में दूसरी बार सुनी, तीन चार बार सुन लेते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो भी सुन लेते हैं, तो मुझे तेज फीलिंग होती रही है। हम पूर्वज हैं, संसार को हमारे वाइब्रेशंस की बहुत जरूरत है। चित शांत हो गया सवेरे ही, 3 बजे में उठा, मैं बाहर आ जाता हूँ, बड़ी जगह है खुली, चित शांत कि बाबा हमारी ओर देख रहा है कि हम संसार को वाइब्रेशंस दें, दुख बढ़ता जा रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, नींद की समस्या बढ़ती जा रही है, अनेक रोग बढ़ते जा रहे हैं, मुझे तो पता चलता है उन सब का। तो मैं आपको ये बात इसलिए सुनाई, ऐसी गुड फीलिंग, ये अवेयरनेस, अपने बारे में श्रेष्ठ स्मृति हमें एकाग्र कर देती है। इसे सवेरे उठते ही सभी याद करेंगे, मैं महान हूँ, जैसे बाबा ऊपर से आवाज दे रहा है, बच्चे उठो, तुम्हारा ये जन्म सोने के लिए नहीं हुआ है, उठो, संसार तुम्हारी ओर प्यासी नजरों से देख रहा है, उठो, इनको सकास दो। ऐसे संकल्प हमारे चित्त को एकाग्र कर देंगे। सवेरे उठकर बहुत अच्छी एकाग्रता का अभ्यास करना है। मैं आज देख रहा था अपने को, शास्त्री होके 8 बजे तक मेरा पूरा समय 3 से 8 बहुत आनंद में बीत गया। नॉर्मली मैं जल्दी उठता हूँ तो थकान हो जाती है 6 बजे, आज बिल्कुल नहीं। तो ये जो आनंद है ये हमारे शरीर को भी टायरलेस बना देता है, बिल्कुल एनर्जी दे देता है। सभी जितना सुंदर चिंतन सवेरे करेंगे उतना ही चित्त एकाग्र होगा, अपने कर्तव्यों की स्मृति, विशेष रूप से ये बात सभी अंडरलाइन कर लें, सवेरे उठकर अपने कर्तव्यों को स्मरण करें। हम मान हैं, विघ्न विनाशक हैं, हमें सबके विघ्नों को हरना है, उसके लिए हमें शक्तियां भरनी है स्वयं में। ऐसा समय आ रहा है जब प्रैक्टिकल में सारा संसार हमारी ओर प्रैक्टिकल में देखेगा, अब तो सूक्ष्म रूप से देखता है, लोग आएंगे, हमें शक्तियों से अपने को भरपूर करना है, चित्त एकाग्र हो जाएगा। फिर अभ्यास करें आत्मा को विजुअलाइज करने का, देखने का, और शिव बाबा को विजुअलाइज करने का, और अपने को देखें, मैं अपनी बुद्धि को आत्मिक स्वरूप पर और बाबा के स्वरूप पर कितनी देर स्थिर कर सकता हूँ। भले कुछ सेकंडों से शुरू करें, 10-10 सेकंड से शुरू करें, आत्मा के बहुत तेजस्वी स्वरूप को देखेंगे, सिंपल नहीं, बिंदु नहीं, बहुत तेजस्वी, पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत तेज निकलता है हमसे, बिल्कुल ऐसा देखें जैसे केवल मैं ही रह गई, आत्मा देह भी नहीं है, केवल मैं। ऐसी गुड फीलिंग में आ जाएंगे तो लंबा काल तक ये एकाग्रता बनने लगेगी। फिर बाबा, बाबा को विजुअलाइज करने के साथ ये ध्यान देंगे कि बाबा के बारे में सुंदर से सुंदर संकल्प हो। मान लो हम एक संकल्प करते हैं, बाबा, बाबा को देखा और संकल्प करें, बाबा आपने हमें बहुत सुख दिया, हमने प्रैक्टिकल में देख लिया, जान लिया आप कैसे सुखों के सागर हो, सुखदाता हो, भक्ति में गाते थे और अब आपके सुखों को हमने अनुभव कर लिया। एक संकल्प के साथ उसको विजुअलाइज करें, अज्ञान सूर्य हो, जैसे आसमान में सूरज चमकता है, परम धाम में ज्ञान सूर्य श्री बाबा चमक रहा है, आपका दिव्य तेज चारों ओर फैल रहा है, ऐसा संकल्प करें जैसे उस तेज से तीनों लोक जगमगा रहे हैं। सुंदर संकल्प, तो एकाग्रता का समय बढ़ता जाएगा। ऐसे बहुत सारे संकल्प बाबा के बारे में। अपने पांचों स्वरूप, ये बहुत सुंदर साधना है जिससे हम स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे, हमारी शक्तियां जागृत होती जाएंगी, हमारी एकाग्रता बहुत बढ़ती जाएगी। अपने पूज्य स्वरूप को भी निश्चित कर लें, ये है मेरा पूज्य स्वरूप, हर एक निश्चित करे। सबके अलग अलग हो सकते हैं, जो जिसको गुड फीलिंग हो, किसी का हनुमान हो सकता है, करें बहुत अच्छी तरह। मैं महावीर हूँ, महावीर जिसे माया घबराती है, जिसने माया की लंका को जैसे जला दिया, जो राम के काम आ गए हैं यानी भगवान के काम आ गए, जो अनेक सीताओं को छुड़ाने वाले बन गए, एक सीता की बात नहीं, मैं ऐसा महावीर हूँ। कोई भी देवी कर ले बहने, जो आपको पसंद हो, ऐसा अपना पूज्य स्वरूप भी पक्का करना है, एक ही निश्चित करें, क्योंकि उसी स्वरूप के साक्षात्कार होंगे। जिस दिन ये खेल बदलेगा, सभी इस पे चिंतन करेंगे, जिस दिन बाबा ने अपनी चाबी लगाई, कौन सी, दिव्य दृष्टि की, उस दिन ये खेल कुछ और चलेगा। और जिन आत्माओं ने जो सुंदर अभ्यास किए हैं, उसके ही दर्शन लोगों को होंगे। आपने आत्मिक स्वरूप का बहुत अभ्यास कर लिया, तो जब लोग आपको देखेंगे, यहाँ चमकती हुई आत्मा दिखाई देगी और उससे आकर्षण हो जाएगा बहुत ज्यादा। जिसने मास्टर सर्वशक्तिवान का बहुत अभ्यास किया होगा, उसके चारों ओर पावरफुल प्रभा मंडल दिखाई देगा सबको। जो बहुत पवित्र बन जाएंगे, वो बिल्कुल पवित्रता के आभा मंडल से गिरे हुए पवित्रता के फरिश्ते दिखाई देंगे। इसलिए अपने इन पांचों स्वरूपों पर एकाग्र होना और ये फीलिंग देना, ये मैं हूँ, बहुत जरूरी है। जैसे ब्रह्मा बाबा को आप सब जानते हैं, शुरू में क्या होता था, जो भी ब्रह्मा बाबा को देखे उसे श्री कृष्ण दिखाई दे। क्यों? शिव बाबा ने जैसे उन्हें बता दिया, तुम ही वो हो, आदि में तुम श्री कृष्ण थे, अब अंत में प्रजापिता ब्रह्मा। नशा हो गया बाबा को, अवेयरनेस हो गई, क्लियर स्मृति हो गई, मैं श्री कृष्ण था। तो वही स्वरूप उनके द्वारा दिखाई देने लगा। तो सभी इस अभ्यास को बहुत बढ़ाएंगे, पर मैं आज आप सभी का ध्यान एक तीसरी बात पर और दिलाता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, अपने स्वरूप को देखें और मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। याद होगा आपको बाबा का, याद करेंगे सभी, कुछ साल पहले अव्यक्त बाबा ने मुरली सुनाते सुनाते एक विशेष बात कही कि आज वतन में तीन फरिश्ते इमर्ज हुए, मम्मा, दीदी और दादी। बाबा ने क्या किया, हीरे लिए मुट्ठी में, हीरो का पाउडर बनाया, बाबा तो फट से बना देगा ना दबाते, और इन तीनों के ऊपर ढक दिया। फिर क्या हुआ, तीनों के अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी, दृश्य बहुत सुंदर था। ये बाबा ने हमें क्यों बताया, ऐसी प्रैक्टिस तुम करो, मैं ऐसा डिवाइन एंजल हूँ, फरिश्ता हूँ कि मेरे अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। अब मैं इसमें आपको दो सुंदर विधियां भी बताता हूँ जो आज सवेरे मैंने अभ्यास की, आप सब भी इसको बहुत करेंगे और बड़ा मजा आएगा। कहीं भी आप बैठ जाएं एकांत में, अपने घर में, छत पर, शांतिवन में तो बहुत जगह है, अभ्यास करें, मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ते स्वरूप को सब जानते हैं, आत्मा दो शरीरों में बैठी है, बाहर बोलो बाहर स्थूल शरीर, और इसके अंदर बिल्कुल ऐसा ही सूक्ष्म शरीर, प्रकाश का दो शरीर हैं। आत्मा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से स्थूल शरीर से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। तो क्या अभ्यास करेंगे, मेरा फरिश्ता स्वरूप मुझसे बाहर निकला और चलने लगा आगे की ओर, आप अपने ही फरिश्ते स्वरूप को जाते हुए देखें जिसे रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, चला गया 20 फुट 30 फुट 50 फुट तक, सामने देखें उसको, फिर वो मेरा फरिश्ता स्वरूप वापिस आ रहा है और मेरे इस देह में समा गया, फिर से मैं फरिश्ता, रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। पांच बार कर लेना, मन बिल्कुल अच्छी तरह नेचुरल रूप से एकाग्र हो जाएगा। दूसरी प्रैक्टिस, अभ्यास करेंगे यही मेरा फरिश्ता स्वरूप इस देह से निकला और चला ऊपर की ओर, अब ऊपर को उड़ते देखेंगे और पहुंच गए सूक्ष्म लोक में, सामने है डिवाइन एंजल फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, बाबा से हाथ मिलाएं, गले लगे, माँ सुनिए ना कल की मुरली, माँ अपनी माँ से गले मिलें, प्यार महसूस करें, बाबा से मिलें, बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया, बाबा से बात करें, फिर मैं फरिश्ता नीचे की ओर उतरता हूँ और प्रवेश कर लिया अपनी देह में। ये ड्रिल होगी बहुत सुंदर, पसंद है, फरिश्ते स्वरूप की ये ड्रिल करने से धीरे धीरे हमारा फरिश्ता स्वरूप क्लियर होता जाएगा। कल की मुरली में सबने बहुत एक सुंदर बात सुनी है, अश्रतन कौन है, नहीं ये नहीं, अश्रतन है चीफ जस्टिस और शिव बाबा है प्रेसिडेंट, सबके ऊपर प्रेसिडेंट होता है ना, जनरल्स के ऊपर भी तो जस्टिस के ऊपर भी, तो अश्रतन है चीफ जस्टिस, उनकी जजमेंट फाइनल होगी। बाबा ये बहुत अच्छी बात कह रहे थे, तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य वैसे ही क्लियर होना चाहिए जैसे वर्तमान क्लियर है, याद है ना, इसके लिए तो अच्छी साधनाएं करनी पड़ेंगी। जैसे जैसे हम एकाग्र होते जाएंगे, ध्यान देंगे, आप अपने को हीरो एक्टर समझेंगे, नशा है ये बहुत बड़ा, मैं हीरो एक्टर हूँ और मैं इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हूँ, ये कुछ स्वमान ऐसे हैं जो धीरे धीरे हमें भविष्य स्वरूप का दर्शन कराने लगेंगे। तो जितने हम स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, इस पूरे चक्र में हमारा रोल क्या है वो हमारी समझ में आता रहेगा। कल परसों का एक स्लोगन और बहुत अच्छा था, मैं वो आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कल था या परसों था, कल ही था शायद, स्लोगन विश्व महाराजन बनना है तो विश्व को सकार दो। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं जिनकी प्रैक्टिस करने से हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी होगी। लास्ट बात, दो चीज है हमारे पास, मन और बुद्धि। बुद्धि को स्वच्छ करें, सद्विवेक से भरते चलें, व्यर्थ को समाप्त करते चलें और मन में महान से महान विचार हों, तो एकाग्रता हमारी नेचुरल होती जाएगी। हमें अपनी एकाग्रता को नेचुरल करना है। और कन्याएं बहुत बैठी हैं जो छोटी आयु की हैं, मैं उन्हें इतना ही कहूंगा, समय अनुसार सावधान रहें, मन को कहीं भटकाना नहीं है, इससे आपका भावी जीवन भविष्य बहुत सुंदर होगा। बच्चों को क्या हो रहा है आजकल, बच्चों को पता नहीं होता कुछ भी, वो तो किसी के भी प्यार में अटक जाते हैं और उसको ही वो जीवन मान लेते हैं, और कल जब उन्हें कष्ट होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जीवन तो कुछ और है। इसलिए सभी सावधान रहेंगे और बहुत अच्छा अपना जीवन निर्माण करेंगे। अब हम चाहेंगे हम 10 मिनट ये सब प्रैक्टिस करें, ठीक है। लाल लाइट करो। संपूर्ण एकाग्रता स्थिर करें, अपनी बुद्धि को आत्मिक स्वरूप पर। मैं आत्मा बहुत बहुत तेजस्वी, इस देह की मालिक, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान, मास्टर ज्ञान सूर्य, केवल मैं, देह मानो है ही नहीं, मुझसे निकला हुआ तेज, प्रकाश, एनर्जी दूर दूर तक फैल रही है। परम धाम में ज्ञान सूर्य शिव बाबा महाज्योति शांति के सागर उनसे निकले हुए शांति के वाइब्रेशंस सारे शांति धाम को मानो शांति का सागर बना रहे हैं। मैं भी वही अपने शांति धाम में हूं, डीप साइलेंस में। सर्वशक्तिवान उनकी शक्तियों की किरणें दूर दूर तक जा रही हैं। उनके अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में, मैं डबल लाइट फरिश्ता, लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ। मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। अब मैं फरिश्ता ऊपर की ओर उड़ता हूँ, आकाश में, आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में, बाबा के सामने। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर, बाबा की ब्लेसिंग्स लेकर मैं फरिश्ता वापिस अपनी देह में, उन्हें यहाँ से उड़कर चले आकाश की ओर, आकाश के पार सूक्ष्म लोक में, सामने बाबा दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि लेते लेते वापिस अपनी देह में, मैं चमकती हुई मणि फिर से आत्मा पर एकाग्र करेंगे। मैं बहुत प्रकाशमान, परम पवित्र, आनंद स्वरूप, बाबा पर एकाग्रता,